શ્રીમદરાજ ચંદ્ર પત્રાંક 105 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 6.
विचार और प्रैक्टिस में क्या अंतर है, हम चर्चा करेंगे। राग कहो या दोष के अर्थ में कहिए, ज्ञान को स्वयं का ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान को ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए या ज्ञान को स्वयं का ग्रहण करना चाहिए, इसी को ही भेद विज्ञान कहते हैं और इसी को ही योग से हटने की प्रक्रिया प्रोसेस कहते हैं। और ये अनुभव सिद्ध करती है जो अनेक सिद्धात्माओं ने सिद्ध करके उसकी प्रसिद्धि की है, सिद्ध करके प्रसिद्धि की है, मैंने आशा करके प्रसिद्धि की है। इस विषय में कोई और कल्पना में नहीं जाना चाहिए और जो अनंत आत्माओं का जो अनुभव है उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तो बहुत बार भी ऐसे कर देते हैं कि भेद ज्ञान हमें नहीं आता है, भीतर में अंतर में भेद ज्ञान नहीं हो पाता है, तो चलो दूसरा उपाय कर ले रहे हैं, चलो दूसरा कार्य कर ले रहे हैं, कुछ शास्त्र पढ़ ले रहे, कुछ इतिहास में भी कार्य कर ले रहे, कुछ न कुछ कर ले रहे हैं कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन जो सिद्ध हुए हैं वो तो भेद विज्ञान से ही हुए हैं, ये बात उन्होंने सिद्धांत रूप से कही है। तो कहते हैं कि जब प्रदोष देखे और दोष अपना दोष भी वो तब देखेगा जब उसको ज्ञान की पकड़ से उसे हटने का प्रयास होगा, तब ऐसा प्रयास शुरू करने वाला प्रयत्नवंत वो मार्ग के लिए उद्यमवंत जीव है, वही सम्यक दशा का पाठ है। ऐसा कहते हैं ऐसा जीव समय दशा का पात्र होता है, दूसरा जीव महावीर भगवान महावीर के गुरु के पास पांच नंबर का है। नंबर छह, एक कल भी उपयोग पूर्वक बिताने वाला, क्या जागृति है कि मनुष्य तादाद से चलता है, मनुष्य की जो तेज है क्या इसका स्तर है, इसकी छुट्टि कौन सी है कि जिस वजह से उसको मनुष्य कहा जाए, कि जो जागृत होता है पल पल में जागृत होता है, जो अपने उदयमान कार्यों में जागृत नहीं रहता, वो राग द्वेष मोह में इस तरह बैठा है कि सारा जीवन पूर्ण हो जाए उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ कितना काल चला गया। तो इसके साथ ही एक मनुष्य की भूमिका बताई है कि कैसा होता है ये मनुष्य, कि ये मनुष्य एक पल भी उपयोग को बिताने वाला है, क्षण क्षण में उसका उपयोग रहता है कि मेरा समय कैसे गुजरता है, मैंने वो व्यर्थ समय कहीं भी जाने नहीं देता। इनके पास बहुत कम समय है, काम इतना बड़ा है और इतना लंबा चौड़ा है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस काम के अलावा फालतू काम के लिए उनके पास समय नहीं है। भले ही उदय के कार्य उसको करने पड़ते हो, करना नहीं है फिर भी अपनी अशक्ति के वश उसको करने पड़ते हो और इसमें उसका समय समय व्यतीत होता हो, इसका उसको दुख है कि मेरा समय चला जाता है, और मेरा समय चला जाता है तो मेरा काम करने का बहुत बाकी है। इसके लिए उसको दिन में जो अंतर में भीतर में जो एक दुख पैदा होता है, इसका समय बिगड़ता है तो उसको अखरता है, तो खटक आती है कि मेरा ये समय जो है व्यर्थ जाता है। तुझको पैसा देना पोषण है, समय देने का पोषण नहीं है। तुझे तो पैसे की 70 कीमत है, इसलिए इसका दृष्टान देते हैं कि जिसने इसकी कीमत अधिक से अधिक मान ली है तो उसको ये पोषण है, तुझे भले ही कम हो, भले ही वो चले जाए, भले उसमें कुछ नुकसान गिनने में गिनने में आता है, नहीं आत्मा तो उसको जाता नहीं, नुकसान आत्मा को कहा होता है, लेकिन गिना जाता है तो भले ही ऐसा गिना जाए लेकिन समय मेरे पास लेने के लिए उनका बहुत सुंदर लक्षण है इस भूमिका का, तो वो समय गंवाना नहीं चाहता, और समय अगर उसका कोई ले लेता है तो होता है मेरा समय है, बहुत कीमती है इस आयु में, तो जितना हो सके उतना मुझे मेरा कार्य कर लेना है, बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। निवृत्ति लेने वाले अगर दृष्टिकोण से निवृत्ति नहीं लेते, बाह्य प्रवृत्ति व्यवसाय आदि छोड़ के जो निवृत्ति लेते हैं, पर इसमें दृष्टिकोण अगर वो नहीं अपनाया हो, उसमें इस प्रकार की पात्रता न हो, तो उसकी यह हालत होती है कि मेरा समय नहीं जाता है, क्या मेरे को समय नहीं जाता है, कहाँ समय निकालना है, इससे समस्या हो जाती है, तो फिर वो फालतू के दूसरे दूसरे कार्य में लग जाते हैं, या उनको नुकसान होता है, आत्मिक नुकसान होता है। लेकिन यहाँ तो पात्रता का विषय चलता है, इसमें तो पात्रता वाले जीव को समय की बहुत कीमत है, भले ही अनंत काल में समय का अंत आने वाला नहीं है, फिर भी इसका हिसाब भाव नहीं लगाता है, उसको तो वर्तमान में अपना कार्य शीघ्र पूर्ण पूर्ण करना है, ऐसा एक अभिप्राय है, और लाभ में देरी हुए वो तो कोई नहीं चाहेगा, चाहेगा क्या कोई नहीं चाहेगा, ऐसे वो अपने लाभ को समझता है, इसलिए एक पर भी वो उपयोग से बिताता है, बिना उपयोग नहीं बिताता है, ऐसा पात्रता वाला क्षमता अधिकारी है, ऐसा व्यस्त का परिश्रम हो जाएगा, कुछ लाभ होने वाला नहीं। उपदेश के अनेक भेद है, तो ये कहेंगे कि धर्मों के विषय में तो सब उपदेश के ही वचन होते हैं और सभी अच्छे ही होते हैं, कोई बुरी बात तो है ही नहीं, कोई पाप करना तो सिखाता ही नहीं, तो इसमें क्या है, सभी बात हम समझे, इसमें प्रयोजन वगैरह प्रयोजन की क्या चीज है, सभी बात प्रयोजन की होती है, ऐसा नहीं होता। हर जीव को हर बात लागू नहीं होती, हरेक की योग्यता अलग अलग है, और हरेक की अलग योग्यता अलग अलग होने से विभिन्न योग्यताओं को योग्यता वाले को किसी न किसी प्रकार से लागू हो गए, ऐसा उपदेश का जो स्तर है, उपदेश के वचनों की जो कोटी है, वो भी अलग अलग स्टेज की है, अलग अलग स्तर की है। इस समय में से मुझे कौन सा भाव, कौन से बात मुझे लागू होती है, ऐसा अपने आप के सिर पे लेने की जो बात है, उसी बात को ध्यान में रखकर सभी बातों में से और सबको छोड़ के इसको पकड़ना, उसी को प्रयोजन का दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें ये जो है परिभ्रमण का नाश होना, ये वर्तमान चालू परिभ्रमण है, उसका नाश कैसे हो सकता है, और इस नाश होने के कारण जो है, मुक्ति के जो कारण रूप परिणाम है, वो कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसका संशोधन करना चाहिए, और ऐसे संशोधन से ही मिलता है, और ऐसे ऐसी जिज्ञासा में आते ही और सब विषय से वो हट जाता है, और ऐसी विषय इसके ऐसी जिज्ञासा में उसकी लगन रहती है, तो इस लगन में उसका कार्य बनता है, बिना लगन ये कार्य भी नहीं बनता है, बहुत महान कार्य है, सारे आगामी अनंत काल का हिसाब किताब यहाँ सियासी फैसला होगा, ऐसा काल है, वहाँ उसकी इस कार्य के लिए लगन भी उसी अनुपात में जरूरी है, ऐसा इस वचन में श्रीमद जी का संकेत है। तो कहते हैं कि दूसरे सब विकल्प दूर करके इस एक ऊपर लिखित सत्पुरुष के रचनामृत का बारंबार विचार कर ले और जगे तेरे ज्ञान की और पुरुषार्थ की शक्ति को मत लगा, ऐसा कहना चाहते हैं। और इस विषय में तेरी जिज्ञासा लंबी चली तो उसमें क्या क्या अनेक अर्थ समाये हुए हैं वो तुझे सिखाने में पड़ेंगे। तुझे अपने प्रयोजन की बहुत सी बातें उसमें सामने आएगी और उस सभी का समाधान इसी जिज्ञासा में से भीतर में से मिलेगा, वरना कोई कहने वाला मिलेगा लेकिन तेरा ध्यान जाएगा नहीं। एक ऐसी चीज है, अगर इस प्रयोजन के दृष्टिकोण में मनुष्य भी प्रवेश नहीं करता है, नहीं प्राप्त करता है इस दृष्टिकोण को, तो इनके प्रयोजन की बात आती है फिर भी इसका ध्यान नहीं जाता, ये परिस्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि ऊपर ऊपर से चलने का इनका उपयोग हो गया है और इनका जो आकर्षण है, जो जगह अनादि से है, उसे अन्य स्थान के में इसका आकर्षण इतना जोर से खड़ा है, रहा है, तो उसका अपने हित के प्रयोजन के रूप में ध्यान ही नहीं जाता। तो ध्यान नहीं जाता तो उसको लगता है कि सब उपदेश जो है अच्छा ही है, तो ऐसा सब अच्छा अच्छा उपदेश हम सुनते रहें, कभी न कभी हमारा कुछ न कुछ नंबर लग जाएगा और हमारा हित हो जाएगा, हमारा पक्ष हो जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर के चलने वाले सुनने वाले को कभी फायदा होता नहीं, कभी लाभ होता ही नहीं, ये कहने का यहाँ आते हैं। 86 नंबर का पत्रांक है, इसके पीछे वाला है 105 नंबर का। इस पत्रांक में श्रीमद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की है, अनेक विध प्रकार की बात की है, छोटे छोटे 10 टुकड़े लिखे हैं लेकिन एक एक में भी बहुत गंभीर विषय भरा है। पहला वचन है इसका, प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर 10 वचन में दिया है। शुरू में एक प्रश्न उठाया है कि महावीर के बोध का पात्र कौन, अंतिम तीर्थंकर, वर्तमान शासन के तीर्थाधिनायक तीर्थनाथ जो भगवान महावीर, इनके उनका जो बोध है, इनका जो उपदेश है, इस उपदेश का खेलने वाला पात्र भी कैसा होता है, इसका उत्तर खुद में दिया है। मैंने पात्रता वाले जीव का 10 लक्षण यहाँ बताया है, कि 10 लक्षण धर्म का दिवस है ना, 10 लक्षण पर्व चलता है, कि बोध जिसको प्राप्त होता है उसको धर्म प्राप्त होता है, और धर्म प्राप्त होता है तो धर्म की पात्रता बिना धर्म कभी प्राप्त होता नहीं, पात्र बिना तो वस्तु रहती नहीं। सिंहन का दूध सोने के पात्र में रहता है, नीति का पात्र में अगर उसको रखा जाए तो वो फट जाता है। वैसे ही एक जगत की अति उत्तम लोकोत्तर चीज है, इसके लिए जीव को स्वयं को पात्रता होनी तो आवश्यक है। बिना पात्रता अगर इस उपदेश को कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है तो उनको बजाय लाभ होने नुकसान हो जाता है, ऐसा भी प्रत्यक्ष तौर पर देखने में आता है। क्या कहते हैं इससे मैं देखें कि कौन पात्र है कि सतपुरुषों सतपुरुष के चरणों का यह बात 10 वचन में उन्होंने सबसे पहले लिखी है। सबसे पहले लिखने का क्या कारण है वो भी 10वां बात करने के बाद उन्होंने बता दिया है कि ऐसा कोई भी पुरुष महावीर के बोध का पात्र है कि 10 बातें बताई वो जिसमें हो ऐसा कोई भी पुरुष ना ऐसा कोई भी आत्मा महावीर के बोध का पात्र है। महावीर का बोध में सम्यक दशा का पात्र है वो का अधिकारी है और इस 10ों में भी पहले जैसा एक भी नहीं है। 10 लक्षण में सर्व से सर्वोत्कृष्ट लक्षण लिया है तो पहले वाले का क्या इसमें क्या बड़ा है कि इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य भरा है। हमने किताब का संकलन किया तो यही मस्तिष्क में बात घूमती थी किया है तो आज से कुछ 5 साल पहले किया है 2034 में किया है तो हिंदी छपी है बराबर है लेकिन जो पहले जो छपी था संकलन किया है 34 साल में 2039 करता है हाँ आपका 40 करता है हमारा 40 करता है करीब 5 साल हुआ लेकिन सतपुरुष के चरणों का इच्छुक ऐसा जीव कैसा होता है ये बहुत विचारणीय विषय है गंभीर विषय है और ऐसी परिस्थिति हुए बिना कभी भगवान का बोध पात्र मैंने इसमें पढ़ता नहीं इस पात्र में पढ़ता नहीं मैंने कभी संगीत देखा ऐसी एक बात अनंत काल में परिभ्रमण करने वाले जीव को यदि मुक्त होने का सही भावना सच्ची भावना होती है तो उसको पहला ये विचार होता है उसको पहले ये विचार आता है सर्वप्रथम उनको ये विचार आता है कि ये मुक्ति का मार्ग कौन सा होगा कैसे होगा इस विश्व में आस्तिक दर्शन वाले जो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं किसकी माने किसकी नहीं माने और कभी की बातों का अगर अभ्यास करने को जाए तो सारा जीवन भी खत्म पड़ता है और जीवन में और भी तो बहुत से काम है। एक व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए बहुभाग प्राणी को बहुभाग समय देना पड़ता है। मैंने 8-10 घंटे की मजदूरी करा तब तक उसका पेट भरता है और पेट जहाँ तक खाली रहता है उसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता। अरे चाय नहीं मिलती है तो दिमाग ठिकाना नहीं रहता है भूखा रहना तो क्या हो जाए। बहुओं का तो ये स्थिति है। अभी कितने लोग ऐसे पूरे के पूर्व पूरे के योग वाले होते हैं जिसको इतनी मजदूरी नहीं करनी पड़ती हो तो इसका समय चले जाते हैं वो विरास में 5 इंद्रिय इतने विभिन्न प्रकार के हैं और इच्छा की जो ज्वाला है धूप है वो आग जैसी है जैसे सारे विश्व को ग्रहित करना चाहती है। तो इसका ध्यान जो है आत्म है क्या चीज है इसके प्रति कभी कोई जाता नहीं है। अगर किसी को जाता है तो हमको ये समस्या पैदा होती है कि हम किसकी माने। बहुत सी बड़ी बड़ी ऑथोरिटी है हरेक संप्रदाय में हरेक बड़े बड़े जाने माने लोग हैं लोग इनके पीछे चलते हैं, किसकी माने और किसकी सत्य होगी, सत्य किसका होगा या सुबह सत्य होगा या किसी एक का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग तो जैन कुंभ में आए हो तो ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन जो जैन कुंभ में नहीं आए उनकी तो क्या हालत है, ये अनुभव करने का विषय है। तो उनको तो अंधेरा अंधेरा ही कार्य देखता है, कौन सी दिशा में मैं आगे बढ़ूं कि जिससे मेरा मुक्ति का स्थान जो है मिल जाए, तो ये कोई अंधेरा न किस दिशा में वो चले, उनको एक ऐसा भाव आता है, यहाँ पर एक ऐसा भाव आता है कि कोई ऐसा मुक्ति ज्ञानी गामी संतूर कहीं होगा तो सही, अगर होवे और मुझे मिले तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल अनजाना रास्ता है, अंत काल में कभी देखा नहीं कभी जाना नहीं, पर कभी उसका कोई संस्कार आराधन मिला नहीं, विपरीत संस्कार लेते 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 परिभ्रमण करते करते हुए अनंत विपरीत संस्कार का संग्रह के साथ लेकर आया है, अभी बिल्कुल संसार के विमुख ऐसी जो भोग की गति है इनका अविपरीत संस्कार उसको लेना है, ये कोई सामान्य समस्या नहीं है। इस समस्या का समाधान सतगुरु के पास है, ऐसा उनको भीतर में जो विचार होता है भाव होता है तब उसको ऐसा लगता है ऐसे सतपुरुष के चरण में मैं रहूं, इसके पास में मेरा निश्चा मार्ग प्राप्त करूं, ऐसी उनको अंदर की जो भावना होती है उसको कहीं भी भुलावा नहीं होता, वरना सतपुरुष से दूर रहने में भुलाओं के जो हजार स्थान में कहां कौन से स्थान में कौन सकेगा तो ठिकाना रहता, ऐसी परिस्थिति है। ये सतपुरुष तो सारे संसार के समुद्र में दीवादानी जैसा है, समुद्र में दीवादानी होती है जहां पत्थर आता है और जहां नाव वो नाव जहाँ फट जाती है तो दूर से पता चलता है कि चला जाता है या दिया जलता है कि यहाँ नहीं जाना है, ऐसा एक मोक्ष मार्ग में सतपुरुष का जो स्थान है वो ऐसा फिरने के लिए स्थान है जो सही दिशा का संकट है, दीवादानी दिशा से संकट है कि यहाँ जाओ साइड में नहीं जाओ, ऐसा सतपुरुष का जो स्थान है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये गंभीर प्रकरण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसको इसकी जरूरत लगे तभी इसकी कीमत आती है। जब स्वयं को दिशा नहीं मिलती है और लगता है कि अगर दिशा भूल गया तो मर गया नहीं अनंत बैर मरना होगा और फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है, पर्वत की चीन में से नीचे गिरता है तो कभी मुर्दा का भी पता नहीं चलता है, जिंदा का तो पता चलने का सवाल ही नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी चीन होती है जिसमें मुर्दे का भी पता नहीं। 84 लाख योनि का परिभ्रमण एक ऐसी चीज है कि इस मनुष्य भाव में या बुद्धि का संतुलन है, तीन गति में इतना बुद्धि का संतुलन नहीं रहता, वहां अगर इसलिए सही दिशा नहीं मिली तो फिर ये मनटोल में गया हुआ पत्ता कहाँ पड़ेगा जाके, जिसका कोई नियम ऐसा है इसका परिभ्रमण में वो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ मरेगा, कहाँ कहाँ जन्मेगा, कोई पता नहीं लगेगा। इसके लिए सत्पुरुष का जो शरण ग्रहण करने का एक भाव आता है, इस भाव को पात्रता के लक्षण में लिया है। अगर यह लक्षण नहीं होगा और दूसरे दूसरे लक्षण की कल्पना करके पात्रता समझेंगे कि मेरे में भी कुछ पात्रता आई है, और ये लक्षण उसका नहीं होगा, कहना चाहिए कि ये तो पात्रता के लक्षण आए ही नहीं, ऐसी ये बात। इसको प्रथम रखने में इसके पीछे वचन गंभीरता में आखिर गंभीरता भी इतनी है कि दूसरे दूसरे जैसे दूसरा इसका एक वचन ये है कि सदैव शिष्य बोध का अविनाशी। तो कोई ऐसा कर करेगा अपने आप में कि हमारा अभिलाषा बहुत सूक्ष्म बात पकड़ने का रहता है, तत्व ज्ञान के विषय में हमारा प्रवेश है और बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बात पकड़ने की हमारी तैयारी है, हमारी इच्छा रहती है, हमारी भावना रहती है, और हम सूक्ष्म तत्व को पकड़ने के लिए बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, कहेंगे तो ये काम नहीं आएगा, ये तुम्हारा परिश्रम बेकार चला जाएगा, ऐसा ही दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे प्रगट सत्य में सत्पुरुष है वो तो एक प्रगट सत्य है, उन्होंने आगे जाके लिखा है, इसलिए आगे जैसे कि चर्चा है करते हैं शास्त्र में जो सत्य का विवरण है वो कागज में है लिखा हुआ दीपक नाम का शब्द है, और सत्पुरुष है वो तो प्रकट दीपक ही है। दीपक शब्द से तुम्हें उजाला मिलेगा या प्रकट दीपक से तुम्हें तुझे उजाला मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें हैं अभी उन्होंने सत्पुरुष के विषय में लिखी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को अपनी लेखनी है उन्होंने जगह जगह से बहुत सुंदर पहलू से व्यक्त किया है। यहाँ इसकी महत्वता और है, पर इसी विषय में आगे जाके जो भी बात आएंगी तो उसका और अधिक विस्तार करेंगे। दूसरा उसका वचन दिया है सदैव सूक्ष्म बोध का अभ्यास के लिए, इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जी सूक्ष्म से इसमें से वो हटता नहीं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म बात है हमारे शरीर में पड़ती है, हमको समझाया कि बात को हटता है, तो ये कहते हैं कि आप बहुत सूक्ष्म बातें करते हैं तो कोई सूक्ष्म बात को समझने तुम्हें तो नहीं भी आ रहे, लेकिन नहीं आ रहे तो कोशिश करनी चाहिए समझने। व्यापार में हम ये नहीं करते कि इसमें दिक्कत है तो छोड़ दो इस काम को, यहाँ तो कहते हैं कि हरकत है वहाँ बरकत है, ये कहावत हो गई है कि जिस धंधे में हरकत है वो कम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ लोग कम कंपटीशन में आते हैं तो बरकत यानी लाभ वहाँ ज़्यादा मिलता है। यहाँ तो हरकत को बरकत के बहाने उठा लेता है और बड़ा उमंग से उत्साह से उठाता है, और यहाँ धनों के क्षेत्र में आता है कहते हैं ये तो बहुत ऊंची ऊंची है, ऊंची ऊंची करके धक्का दे देता है, ऊंची करके क्या दे सकता है, धक्का मारता है, लात मारता है कि ये ऊंची है हमारे सामने। मनुष्य सच्चा मनुष्य ऐसा नहीं होता, मैंने सम्यक दशा के जो पात्र है भगवान के बोध के जो पात्र है वो ऐसा नहीं होता। उनके अभिलाषा में तो ये बात रही है कि कितना भी सूक्ष्म बात हो, कितनी भी सूक्ष्म विषय हो बोध का, मैं पूरी कोशिश करके उसको समझूंगा, सिर्फ समझूंगा ही नहीं समझ के उसका प्रयोग भी नहीं करूंगा। पर बोध भी वहां सूक्ष्म होता है जहां बोध कार्यान्वित प्रयोग रूप में होता है। वहां खेल का विषय इतना सूक्ष्म नहीं है जितना विषय प्रयोग का सूक्ष्म होता है। तो ये प्रयोग के विषय की जहां जहां बात करती है वहां वहां विषय अधिक सूक्ष्म होता है, पर विषय अधिक सूक्ष्म होता है तो इस सूक्ष्मता को उमंग से, रस से, प्रयत्न से ग्रहण करने की एक तमन्ना, एक लगन रहती है। इस पात्र का लक्षण बताया गया तो सदैव रहता है, हमेशा रहता है पात्रता वाले दिन। तीसरा वचन लिया है गुण पर प्रशस्त भाव रखने वाला, जो गुण का चाहक है। कैसा है पात्र जी? के स्वयं को भी गुणवान होना है, गुण की उपलब्धि चाहिए। ऐसा गुण की प्राप्ति का इच्छुक है। इसका एक लक्षण यह भी है कि दूसरे मुमुक्षुओं में, दूसरे गुणवान पुरुष में, गुणवान आत्मा में वो प्रगट गुण देखता है तो उसको प्रमोद आता है, उसको प्रशंसा करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी बहुमान करता है, उसकी भक्ति करता है। ऐसा एक पात्रता का लक्षण है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बिना कहे समझ लेना चाहिए कि उसको गुण की भूख नहीं है। और जिसको गुण नहीं चाहिए और गुण पैदा होने में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं लगता, ये तो सहज जीव का परिणाम गिर जाता है। और गिरने में वो गिरता ही रहता है, अधिक गिरता है और गिर के कहा जाता है कि 2000 सागर ज्यादा से ज्यादा या इसके पहले पहले रोज में भी चला जाता है। अवगुण में जीव की जो शक्ति है वो कुंठित होती है, मैंने अशक्ति बढ़ती है और बढ़ती हुई अशक्ति और अशक्ति बढ़ने का विस्तार हो जाती है। वैसे ही गुण प्राप्त होने से जीव की जो आत्मिक शक्तियां हैं वो खुलती है, विकास प्राप्त करती है और वो शक्ति है वो अधिक शक्ति प्राप्त करने में मदद रूपती है। ऐसी ही ऊपर जा उठने में और गिरने में सहज ही प्रक्रिया बनती है। तो अगर गुण को प्राप्त करने वाला नहीं होगा, गुण पर प्रशस्त भाव रखने वाला नहीं होगा तो अवगुण में, दोष में कहां कितने हद तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक तो सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जो जागरूक है, जागृत चैतन्य है, जिसमें चैतन्य जागृत हो गया कि मैं चैतन्य हूं और मेरे गुण क्या है और इसमें गुण से विपरीत दोष क्या है, इसका सही अवलोकन, सही उसका परिज्ञान सम्यक ज्ञान में आता है। इसके पहले गुण दोष का मनुष्यों की भूमिका में थोड़ा यथार्थपना आता है, सच्चा मनुष्य होता है तो, वरना तो इसके विषय में यथार्थता आना ही मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति है, एक तो ज्ञानी होने वाला गुण दोष के विषय में बहुत बारीकाई से चलता है, सूक्ष्मता से चलता है और एक ज्ञानी, ज्ञानी तो समझो कि ज्ञान का जिसको जीवा प्रकट हो गया है तो उसको तो सवाल ही नहीं है तो गुण दोष को नहीं समझे। लेकिन इसके पहले पात्रता में क्या होना चाहिए इसका एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर लिख दिया है कि जहां भी तुम गुण को देख, अगर तुझे गुण से सराहना है तो मुझे उस पर सहज रूप से स्वाभाविक तौर से उसकी प्रसन्नता आनी चाहिए। यही तेरी गुण की चाहने का लक्षण है और यही सम्य दशा के पात्र होने का लक्षण है। इसे में भी प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन थोड़ी सी बात करें तो ऐसी जिसको गुण प्राप्त करना है तो कभी अपने विषय में दोष का बचाव नहीं करेगा। दोष का बचाव करने वाला स्वच्छंदी तो है ही, साथ ही उसको दोष पर प्रशस्त भाव है, गुण पर नहीं है। एक विपरीत लाइन होगी तो जिसको गुण ही चाहिए वो दोष से विरुद्ध जाएगा। क्या है गुण है वो दोष का प्रतिपक्ष होने से वो दोष से विरुद्ध जाएगा। कहीं सोपर के विषय में दोष के पक्ष में वो कभी खड़ा नहीं रहेगा, उसको ही गुण की प्रशस्त भाव रखने वाला कहने में आया है। इनका दूसरा पड़का है वरना तो कहेंगे कहा हमको तो बराबर गुण पर प्रशस्त भाव आता है, गुणवान पर कौन प्रशस्त नहीं रहेगा, उसको तो प्रशंसा हर कोई करेगा, सामान्य तो से करेगा ही करेगा, हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम दोष का भी पक्ष करता है